તારીખ 21/3/1999, શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન, પ્રશ્ન 449 ઉપર, પૂજ્ય ભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 392.
પ્રશ્ન 449. યો બાત બેઠતી હૈ પ્રશ્ન દોહરાતે હૈ સીધું હિન્દી ફાવશે મને. આ વાત બેસે છે કે આ કર્યા વગર છૂટકો નથી અને સાથે અઘરું પણ લાગે છે, તો ઉપાય શું? કલ ચર્ચા હોઈ હતી કે એ વાત તો બેઠતી હૈ કે એ બિના છુટકારા નહીં હૈ, એસા ભી લગતા હૈ ઓર સાથ સાથ કઠિન હૈ એસા ભી લગતા હૈ, તો ક્યાં કરે, ઇસકા ક્યાં ઉપાય હૈ? મેં પ્રશ્ન પૂછને વાલેને અપની ભૂમિકા સ્પષ્ટ કી હૈ કે હમકો બાત તો સમજ મેં આતી હૈ, સંમત ભી હોતી હૈ, ઓર એસે કોઈ કાર્ય કિયે બિના સંસાર સે છુટકારા હોને વાલા હૈ હી નહીં, વો બાત ભી લગતી હૈ, ફિર ભી કઠિન લગતા હૈ, એસી હમારી એક સ્થિતિ હૈ. ઇસકે લિયે ક્યા કરે, ઉપાય ક્યા હૈ, મતલબ ક્યા કરે? સમાધાન, વિકલ્પથી છૂટો પડીને, એકત્વ બુદ્ધિ તોડીને નાયકની ધારા પ્રગટ કરવી, આ એક જ ઉપાય છે જન્મ મરણ સે છૂટને કે લિયે. હમારે પરિણમન મેં જો ભી વિકલ્પ માને, વિભાવ હૈ, રાગ હૈ, વિકાર હૈ, મોહ હૈ, જો ભી હૈ, ઉસસે ભિન્ન મેં જ્ઞાન સ્વભાવી આત્મા હું, એસે જ્ઞાન ધારા કો પ્રગટ કરના યહી એક ઉપાય હૈ. વિભાવ કે સાથ જ્ઞાન કા મેને આત્મા કા એકત્વ હો રહા હૈ, વો એકત્વ ટૂટ જાના ચાહિયે, વહી એક ઉપાય હૈ, દૂસરા કોઈ ઉપાય હૈ નહીં. યહાં તક પહોંચના ઇસકે લિયે જો કુછ પ્રોસેસ હૈ વો તો હૈ હી, વો પ્રોસેસ કો અપેક્ષિત રખ કરકે ये बात है, क्योंकि वहां वो बात इतनी विस्तार से नहीं चलती थी. भेद ज्ञान करना, भेद ज्ञान करना, न्याय की धारा प्रकट करना, वो बात प्रमुख से रूप से चलती थी. तो ऐसा होना चाहिए, इसके इसके बिना कोई निस्तार नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है. जीव कहाँ बंधा हुआ है या बंधन में पड़ता है, कहाँ कि अपने विभाव भाव के साथ वो एक में तद्रूप होकर के प्रतिबद्ध हो जाता है. मूल में तो यही संसार है, फिर ये विकल्प का विषय होता है जो भी, ऐसे संसार के पदार्थ को भी संसार कहने में आता है कि हमारा परिवार है वो संसार है, हमारी संपत्ति है वो संसार है. लेकिन वास्तव में ऐसे पदार्थों के प्रति जो विकल्प है, राग है, उसके साथ एकत्व है. राग माने पर अभिलाष, के साथ आत्मा तन्मय होकर के, तद्रूप होकर के परिणमन करता है, यहाँ से संसार चालू होता है और इसके फल स्वरूप फिर जन्म मरण होता है. तो मूल में जहाँ भूल होती है वो भूल छूटे बिना बाहर से हम त्यागादि करें तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। जैसे अपराध करता है जीव और हम उपवास करें शरीर को दंड दें तो अपराध किसी ने किया दंड होगा किसी ने, ये कोई न्यायपूर्ण बात नहीं है। सर्प वो दर में चला जाता है, दर को क्या बोलते हैं, बिल में चला जाता है, और लकड़ी पछाड़े मारे बिल को, सर्प को क्या होने वाला है। ऐसे भूल करता है जीव स्वयं, वो राग के साथ एकत्व करता है, वो छूटे छूटे बिना राग के साथ एकत्व वैसा का वैसा रहे और फिर और भी हम फेरफार करते रहे तो इससे तो कोई संसार मिटने वाला नहीं है। और संसार नहीं मिटने वाला है तो संसार के दुख भी नहीं मिटने वाले। द्रव्य को ग्रहण किया, द्रव्य पर दृष्टि की, परंतु यह दृष्टि टिकनी चाहिए, टिकानी चाहिए। द्रव्य को मैंने मूल स्वरूप को, आत्मा के मूल स्वरूप को ग्रहण किया जिसने, और द्रव्य की दृष्टि हो गई, सम्यक दर्शन हो गया, फिर भी ये दृष्टि टिकनी चाहिए, चालू रहनी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए।
प्रकट होने के पहले टिकानी चाहिए या बाद में,
जब हुई नहीं तो टिकाने का कहाँ सवाल है, जो हुई उसको टिकाने को, इसलिए ना ग्रहण किया, द्रव्य को ग्रहण किया, मैंने अनुभव किया, ग्रहण होना मैंने अनुभव होना, अनुभव होने से दृष्टि होती है, दृष्टि होती है तो वो दृष्टि टिकनी चाहिए। उपयोग तो बहुत कम समय रहता है, फिर तो परिणति चलती है, उपयोग तो लंबा काल है ही, दृष्टि सतत रहती है, चाहे उपयोग रहे नहीं रहे, दृष्टि कांस्टेंट रहती है। वो दृष्टि टिकनी चाहिए, मैंने बराबर कांस्टेंट रहनी चाहिए। मान्यता में लीधु, नक्की करू छे कि हूँ जुदो छु, पण ते रूपे कार्य थाय तो साचू नक्की करू कहवाय। शू कहे छे, विकल्प थी मान्यता में लीधु है, हम ऐसा मानते हैं, विचार से हम राग से मानते हैं ऐसा कहते हैं, और हमको यही निर्णय है, हमारा निर्णय वैसा ही है कि मैं भिन्न ही हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा भिन्न ही हूँ, परंतु उस रूप कार्य हो तो सच्चा निर्णय किया ऐसा कहने में आता है। निर्णय के साथ निर्णय अनुसार कार्य होना चाहिए, निर्णय कुछ और कार्य कुछ और ऐसा नहीं चले, निर्णय के अनुसार कार्य होना चाहिए तभी सच्चा निर्णय है। जिसको सच्चा निर्णय होता है उसको भिन्न होने का प्रयत्न अंतर में आए बिना रहता नहीं। जेने साचू नक्की थाय छे तेने जुदा पड़वानो प्रयत्न अंदर आया वगर रहतो नथी। तो बात साफ हो गई कि निर्णय के साथ पुरुषार्थ का संबंध है, जिसको सही निर्णय होता है उसको इसके लिए पुरुषार्थ होता ही है। निर्णय तो हुआ, निर्णय हमारा बराबर है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं चलता तो वो निर्णय यथार्थ नहीं है। निर्णय होने में लंबा प्रोसेस है, लेकिन एक स्टेज पे एक तबके निर्णय यथार्थ हो जाता है तो निर्णय अनुसार पुरुषार्थ उठता है, सहज पुरुषार्थ चालू हो जाता है। निर्णय होने में काफी लंबा प्रोसेस है कि पहले नए नए आने वाले को परिभ्रमण की चिंता हो जाए, एक मरण की चिंता बहुत है, अरे मरण के कारण रूप कोई रोग होता है, कैंसर आदि, हार्ट डिजीज आदि, तो भी इसकी चिंता बहुत होती है, मृत्यु की चिंता तो बहुत है, इसका मतलब अनंत जन्म मरण की, अनंत मृत्यु की चिंता इसके अनुपात में होनी चाहिए, तभी तो संसार से उदासीनता आएगी, तभी हमारे सांसारिक परिणामों में उदासीनता आएगी। यहाँ से प्रोसेस चालू होता है, फिर सत्संग की रुचि बढ़ती है कि जन्म मरण कैसे मिटाएं, और एक निर्धार भी होता है कि हमको ये कार्य जैसे कैसे भी एट एनी कॉस्ट कर लेना है। अगर इतनी बड़ी उपलब्धि है तो इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए हम तैयार हैं, ऐसा भी एक निश्चय होता है, तभी वो निश्चय का बल आता है, फिर वो अपने परिणामों के प्रति सावधान हो जाता है, क्योंकि नुकसान तो वर्तमान परिणाम में होता है, तो उसका अवलोकन चालू होता है, और उस अवलोकन में हमारे विभाव परिणामों की जाति की पहचान होती है, और ज्ञान से स्वभाव जाति की पहचान होती है। वो पहचान सही हुई तब तो सच्चा निर्णय किया, ये बात चल रही है कि मैं भिन्न हूँ, ऐसा निर्णय किया तो फिर इसके लिए पुरुषार्थ होना चाहिए। जिसको सही निर्णय हुआ है कि मैं भिन्न हूँ, उसको भिन्न होने का प्रयास पुरुषार्थ भीतर में हुए बिना रहता नहीं, मतलब उसको भेद ज्ञान का पुरुषार्थ सहज चालू हो ही जाता है। जिसको ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ मैं, सर्व पदार्थ से भिन्न हूँ, सर्व विभाव भावों से भी मैं सर्वथा भिन्न हूँ, ऐसा सच्चा निर्णय मैंने सही पहचान हुई, उनको भेद ज्ञान का पुरुषार्थ उसको हुए बिना रहता नहीं, सहज चलता है। निर्णय के साथ पुरुषार्थ चालू होना अवश्यंभावी है, ये सच्चा निर्णय का सिम्टम है। पुरुषार्थ चलता है वही सच्चा निर्णय का सिम्टम है। निर्णय तो हमने बराबर किया है लेकिन हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता है, तो समझ लेना चाहिए कि निर्णय पक्का नहीं है, निर्णय में ही गड़बड़ है। कैसी बात है,
ज्ञान की निर्मलता के साथ ही पुरुषार्थ हुआ है।
ज्ञान की निर्मलता पहचान हुए स्वरूप के स्वभाव के इतनी है, निर्मलता की शुरुआत तो इसके पहले थोड़ी थोड़ी चालू हो ही जाती है। जितना जितना मोह मुमुक्षु की भूमिका में चालू होती जाती है, अब उतना निर्मल हुआ ज्ञान, उतना निर्मल हुआ कि अपना जो निर्मल स्वरूप है, अनादि अनंत संपूर्ण निर्मल, वो निर्मल ज्ञान में प्रतिभाषित होता है, तभी सच्चा निर्णय हुआ, तभी सच्ची पहचान हुई। और वो पहचान हुए उसका लक्षण वो है तो उसका पुरुषार्थ चालू होता है। अगर पुरुषार्थ चालू नहीं होता है तो समझ लेना चाहिए कि वो निर्णय सच्चा नहीं है, एक कल्पना है। मतलब वो है कि कल्पित निर्णय भी होता है और सच्चा निर्णय भी होता है। जो शास्त्र के स्वाध्याय करते हैं, तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं, आत्मा कैसा है वो जानने का प्रयास करते हैं, तो वो जानने में दो बात हो जाती है, एक कल्पना वाली बात हो जाती है, एक सही बात होती है। हमें उस बात की सावधानी रखनी है कि कहीं हम कल्पना में नहीं चढ़ जाए, वो बात का हमें ख्याल रखना है। इसके पहले पुरुषार्थ, सहज पुरुषार्थ, स्वाभाविक पुरुषार्थ नहीं होता है, कृत्रिम पुरुषार्थ होता है।
कृत्रिम पुरुषार्थ कहना या प्रयत्न करना पड़ता है।
हाँ, प्रयत्न करना पड़ता है। को कृत्रिम पुरुषार्थ को, विकल्प की प्रधानता वाली बात को, हो राग की प्रधानता में चलते हैं। पहचान होने के बाद ज्ञान की प्रधानता चालू होती है। परिणमन में दो बात है, राग और ज्ञान, एक मुख्य होता है, दूसरा गौण होता है। दोनों मुख्य नहीं होता, दोनों गौण नहीं होता। तो अनादि से राग की प्रधानता में ज्ञान चल रहा है, तो राग की प्रधानता होने से राग का अनुसरण करता है ज्ञान। और जब से ज्ञान स्वभाव आत्मा की पहचान होती है, तब ज्ञान की प्रधानता होती है, फिर ज्ञान का अनुसरण करता है राग। ऐसे पूरी चाल बदल जाती है, परिणामों की इस तरह बन जाता है। प्रति तो निर्णय हुआ उसी वक्त थोड़ी बहुत आ गई, लेकिन वो भी ज्ञान की पर्याय है। श्रद्धा में तो जो मिथ्या श्रद्धा है वो अधिक अधिक मंद होती जाती है, और जब साक्षात्कार होता है निज परमात्मा का, तब श्रद्धा सम्यक होती है, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। इसके पहले श्रद्धा उल्टी है, वो सुलटी नहीं हुई है, लेकिन उल्टी में मंदता आई है, ताकत उसकी टूटी है। तो ताकत टूटती है तो पूरी मरती है, और बलवान होती है तो उसका नाश नहीं होता है, कमजोर होने से नाश होता है।
अगर श्रद्धा की मंदता भी ना आवे तो आगे भी नहीं बढ़ावे।
वो तो है, ये तो शुरू से वही तो प्रोसेस है। परिभ्रमण की चिंतना में भी श्रद्धान मिथ्या श्रद्धान मंद होता है। दर्शन मुंह को मिथ्या श्रद्धान को, उसका मंदता का ही प्रोसेस है। स्वरूप की पहचान, स्वरूप निश्चय तक, स्वरूप का निर्णय तक मिथ्या श्रद्धा की मंदता का प्रोसेस चालू रहता है, और स्वरूप के पहचान के काल में अत्यंत मंद हो जाता है दर्शन मुंह, फिर उसका नाश होता है स्वानुभव के काल में, आत्म साक्षात्कार के काल में उसका नाश होता है। तब से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। उसको आगम में चतुर्थ गुण स्थान बोला है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की शुरुआत हुई एकदम जघन्य भाव से, शुरुआत होती है। फिर पंचम गुण स्थान में बढ़ता है, फिर आगे के गुण स्थान में और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। बारहवें गुण स्थान में मोक्ष मार्ग संपूर्ण होता है और मोक्ष शुरू होता है, और शादी अनंत काल तक फिर मोक्ष चालू रहता है। देह तो आयुष्य तक होता है, आयुष्य पूरा होने से फिर नया देह की प्राप्ति मुक्त आत्मा को नहीं होती, वो मुक्त होगी अरियंत दशा में।
सर,
इस तारीख को प्रथम प्राथमिक चक्र पहले आती है तो फर्स्ट पे रहती है, फर्स्ट पे रहती है।
प्रायोरिटी कब आती है? वास्तव में तो परिभ्रमण की चिंतना और प्रायोरिटी साथ ही साथ है। हमको चिंता हुई कि हमारा जन्म मरण नहीं हो तो साथ ही ऐसा होना ही किसी कीमत से होना नहीं चाहिए, वो बात इसके साथ जुड़ी हुई है, उसी को ही चिंता कहते हैं कि हमको किसी कीमत पे जन्म मरण में अभी नहीं जाना है, वो रास्ता हमको छोड़ना है, बदलना है। तो वो रास्ता बदलने का जो अभिप्राय है उसमें चेंज ऑफ प्रायोरिटी होगी, आत्मकल्याण फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है, संसार के कार्य सब लास्ट प्रायोरिटी में आता है, वहाँ सेकंड प्रायोरिटी नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट दो ही प्रायोरिटी है। अभी तक क्या हुआ है कि धार्मिक संप्रदाय में हम धार्मिक साधन भी करते हैं लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी संसार की होती है, लास्ट प्रायोरिटी धर्म की होती है। संसार का कार्य मुख्य हो जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी में रहता है, फिर अवकाश रहा जितना भी उतना धर्म का कार्य करेंगे तो वो प्रायोरिटी पूरी बदल जानी चाहिए। जब ये बात हुई कि हमको किसी कीमत पे आत्मकल्याण कर लेना है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आया। ऐसा बहुभाग बनेगा, प्राय ऐसा जीवों को बनेगा, ज्यादा लोग ऐसे होंगे या ऐसे लोगों की बड़ी तादाद होगी लेकिन कम मात्रा में आत्मकल्याण करने वाले भी होंगे। अगर आत्मकल्याण करने वाले कम मात्रा में है तो हमारा नंबर भी उसमें ही होना चाहिए। कहीं भी हम फर्स्ट रैंक में बैठने वाले हैं या लास्ट रैंक में, तो वही हमको लगेगा नहीं, हमको तो फर्स्ट रैंक में रहना है, हम क्यों रहे पीछे क्यों रहे हैं। और जिसने आत्मकल्याण पंचम काल में किया उसके लिए ये चतुर्थ काल है, पंचम काल नहीं है। पर्टिकुलरली इसके लिए चतुर्थ काल है, उसके लिए वो काल पंचम काल नहीं है, वो धर्म काल ही उसके लिए। क्यों? इतना बड़ा सौभाग्य कहाँ से कि पंचम काल में धर्म की प्राप्ति किया, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उसको पंचम काल लागू नहीं पड़ता क्योंकि वो काल मैंने हीन परिणाम वाले जीव, काल माने क्या कि यहाँ हीन परिणाम वाले जीव अधिकतर होते हैं। अब हमारा कोई नाता नहीं उन लोगों से, हम अलग हो गए, ठीक है। ऐसे जीव ज्यादा है तो हम क्या करें, इसका तो कोई उपाय नहीं है। हमारे लिए पुरुषार्थ करना ये हमारे बस की बात है, हम कर ले। हिंदुस्तान में गरीबी ज्यादा है लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं सोचते कि ज्यादा गरीबी है तो हम भी गरीब हो जाएं, सोचते हैं क्या? कोई नहीं सोचेंगे, क्यों सोचेंगे?
भी होना चाहता
है, यहाँ तो ऐसी बात होती है। हम 12 बजे हम खा लेते हैं, कितने भूखे हैं इसके विचार थोड़ी ना करते हैं, कभी किन 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 ने नहीं खाया, किस किसने नहीं खाया, कोई नहीं करते। फिर पेट भरता है तो मान लिया कि तुम सारी दुनिया ने खा लिया, बस होता है कि नहीं होता है। और अगर हम आत्मकल्याण करते हैं, कर पाते हैं, तो दूसरों को इस कार्य में हम लगा सकते हैं कि देखो ऐसे काम होता है। अब हम ही नहीं जानते हैं, दूसरे की चिंता क्या करके भी क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमको आत्मकल्याण करना चाहिए। आत्मज्ञान होता है तो आत्मज्ञान का दान हो सकता है, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है वो ज्ञान दान कैसे करेगा? पैसा है वो दान दे सकता है, भिखारी कैसे दान देगा? तो इसलिए सबसे पहले हमें को तो हमको तो संपन्न होना चाहिए। શું કે છે, જેને સાચું, જેને સાચું નક્કી થાય એટલે જેને સાચો નિર્ણય થાય તેને જુદા પડવાનો પ્રયત્ન અંદર આવ્યા વગર રહેતો નથી, સહેજ આવે છે એનો અર્થ, આવ્યા વગર રહેતો નથી એનો અર્થ શું, સહેજ આવે છે। ગડમથલ કરતા સાચું તો આ જ છે, માર્ગ આ જ છે એમ શ્રદ્ધારૂપ પરિણતિ થાય છે। ગડમથલનો એક્ઝેક્ટ હિન્દી નથી મળતો, કાલે પણ એ ગડમથલ શબ્દ આવ્યો હતો, હે હિન્દીમાં શું લીખ્યું છે, ચિંતન મનન લીખ્યું છે, આમાં ઉપો થવું જોઈએ। कठल में भीतर में बहुत चलता है, हाँ बहुत वहापो चलता है, वहापो बराबर से
मैंने आपके विचारों का एक साथ सम्मिलित मिश्रण हो जाना, हाँ उसमें से कुछ निकल के आ जाए, हाँ
हाँ हाँ ऐसा चलता रहे, हाँ जिसको वहापो बोलते हैं, बहुत मंथन चलता है, वहापो पूर्वक मंथन बहुत चलता है। गुजराती में बहुत एप्रोप्रिएट वर्ड है गड़मथल, गड़मथल बोलते हैं उसको, हर भाषा के शब्द एप्रोप्रिएट मिलते हैं। गड़मथल करता साचू तो आज छे ने मार्ग आज छे, क्या है वहां पर मंथन चल के एक निश्चय हुआ कि यही सच्चा है, यही सच्चा मार्ग है, ऐसे श्रद्धारूप परिणति होती है। तो एक निर्णय, एक श्रद्धान माता है कि बस यही सच्चा है और परिणति कार्य करती है, परिणति रस से बंधती है, उसमें रस आता है। स्वाध्याय जो है उसमें हमारा आत्मकल्याण की भावना का रस होना चाहिए। पर रस तो है ही हम लोगों को, संसारी प्राणी को बाहर के पदार्थों का संयोग का पर रस तो है ही, वो रस वैसा का वैसा है। और हम बौद्धिक स्तर से, बौद्धिक लेवल पे बात को समझ लें तो इससे कार्य नहीं होता है, वो ज्ञान बेकार जाता है, वो समझ बेकार जाती है। हमारा रस पलटना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं इस स्वाध्याय, कि हमको आत्मकल्याण करना है इसलिए कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा रस होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, तो उसकी परिणति होती है और वो परिणति कार्य करती है। जिसने संसार में बहुत रस लिया है उसको संसार परिणति बनी हुई होती है, उसको ये बात समझने पर भी उसका असर नहीं पहुंचते, ऐसा बन जाता है। और जिसने बहुत रस नहीं लिया हो उनको ये बात चोट मारती है, उसको इफेक्ट होती है, तो उसकी परिणति उसका रस बदल जाता है, रस बदल जाता है तो परिणति हो जाती है। परिणति का दृष्टांत ले ले कि जैसे हम फलाना नाम वाला आदमी है, तो बचपन से चलता है, चालू ही रहता है, उसको कहते हैं परिणति। मैंने वो अनुभव करता है, अनुभव की परिणति है, मैंने भान रूप परिणति है कि मैं फलाना फलाना हूं, ऐसा भान रहता है, सतत भान रहता है, वो भान छूटता नहीं, नींद में भी चालू रहता है, कोई पुकारता है तो नींद में भी हाँ बोल के हाँ मैं ही हाँ ऐसा, उसको बोलते हैं परिणति। ऐसी परिणति आत्मा के विषय में हो जानी चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीरधारी नहीं, मैं एक चैतन्य पदार्थ एक आत्मा हूं, भिन्न आत्मा हूं शरीर से, राग से, सभी प्रकार के दूसरे दूसरे संयोग से, मैं भिन्न ज्ञान स्वरूपी आत्मा। वो परिणति कार्य करती है, मैंने मजबूत होती है, परिणति में बहुत ताकत है। बाद में विशेष चारित्र होता है, पछी चारित्र था, इसे चारित्र माने आचरण, आचरण बाद में आता है, पहले श्रद्धा ज्ञान की परिणति होती है, फिर उस पर बाद में आचरण होता है। अश्रद्धा ने साथे अमुक जातनी लीनता थाय छे, अमुक जातनी એટલે અલ્પ લીનતા થાય છે, બિલકુલ લીનતા નથી હોતી, લીનતા માને ચારિત્ર, એકાગ્રતા, લીનતા, એકાગ્રતા, ચારિત્ર સબ એક અર્થ। તો શ્રદ્ધા કે સાથ સાથ કુછ કુછ પૈમાન પૈમાને મેં એકાગ્રતા ભી હોતી હૈ, ક્યોકે શ્રદ્ધા કા બલ હૈ, तो चारित्र में भी कुछ लीनता आ ही जाती है, और चारित्र में लीनता होती है तो अनंतानुबंधी छूट जाता है। मैंने क्रोध मान माया लोभ ये चारित्र की, चारित्र मोह की मुख्य प्रकृति है, चार चारित्र मोह है, इसका मुख्य चार प्रकृति में विभाजन है, क्रोध मान माया लोभ, और उनका चार स्टेज है, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान वर्णी, अप्रत्याख्यान वर्णी और स्वंजलन। तो सबसे पहले जब सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, और अल्प मात्रा में स्वरूप लीनता रूप चारित्र होता है, तब चारित्र मोह की अनंतानुबंधी प्रकृति मिट जाती है या उसका नाश हो जाता है। क्रोध मान माया लोभ में अनंतानुबंधी का नाश होता है। अनंतानुबंधी मैंने अनंत अनुबंध करे ऐसे भाव, कैसे कि जैसे कोई क्रोध करता है तो वो अनंतानुबंधी क्रोध इसलिए है कि उसको क्रोध हुआ उनको वो सही मानता है, उसके अभिप्राय में ऐसा क्रोध करने लायक है, करना चाहिए, किए बिना नहीं चले, ऐसा अभिप्राय है, तो अनंत बार वो करेगा, उसको कहते हैं अनंतानुबंधी। मैंने करता है दोष और दोष की अनुमोदना भी करता है, निषेध करना चाहिए, इसके बजाय अनुमोदना करता है, वो अनंतानुबंधी है। और उसका एक लक्षण और भी है कि उसमें चिकनापन ज्यादा होता है, चिकनापन ज्यादा होता है, या उसमें रस तीव्र होता है, उसको अनंतानुबंधी कहते हैं। वो अनंतानुबंधी में दोनों भाव है, अशुभ भी है और शुभ भी है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता और जीव धर्मस्थान में जाकर के शुभ राग के परिणाम करते हैं, पूजा भक्ति वगैरह, शास्त्र स्वाध्याय वगैरह, तो उसमें भी अनंतानुबंधी का राग है। क्रोध तो द्वेष की प्रकृति है, राग और द्वेष दोनों अनंतानुबंधी होते हैं। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक, तो उसका मिटने का ऐसा होता है कि चतुर्थ गुण स्थान होने पर अनंतानुबंधी वाले क्रोध मान माया लोभ मिटते हैं। फिर पंचम गुण स्थान में प्रत्याख्यान वर्णी क्रोध मान माया मिटते हैं। फिर छठे सातवें गुण स्थान में अप्रत्याख्यान वर्णी क्रोध मान माया लोभ मिटता है। फिर सात आठ नौ दस बारह में संजलन कषाय मंद 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 होकर के बारहवें गुण स्थान में क्रोध मान माया लोभ संजलन का मिटता है। फिर अकषाय बारहवां गुण स्थान में अकषाय चारित्र होता है, यथाख्यात चारित्र जिसको बोलते हैं। वहाँ किसी भी प्रकार का क्रोध मान माया लोभ कोई भी मोह की प्रकृति का परिणाम नहीं होता। बाद में अरियंत दशा और सिद्ध दशा होती है। उस तरह से मोक्ष मार्ग अनादि अनंत व्यवस्थित और निश्चित है। मोक्ष मार्ग अनादि अनंत व्यवस्थित और निश्चित है, चतुर्थ गुण स्थान से बारह गुण स्थान तक। और एक दफे जो मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर लेता है वो निश्चित रूप से अल्पकाल में मोक्ष को पाता ही है, उसका संसार अनंतकाल कभी नहीं रहता। क्योंकि उसका संसार पनपने का बीज है वो जल गया है सम्यक दर्शन होने से। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मोक्ष मार्गी जो होते हैं वो तो अल्पकाल में सिद्धालय में पधारते हैं। बात रही इस पहले वाली परिस्थिति में, जीव का अनंत काल अगर कहीं जाता है तो सम्यक दर्शन पाने के पहले ही जाता है। और उसकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होने से उस निश्चित मार्ग पर, नियत मार्ग पर आना बहुत कठिन होता है। फिर भी कृपालु देव ने थोड़ी योजना अपने अनुभव से प्रसिद्ध की है, जो मुमुक्षुता आरोहण क्रम में हम लोगों ने और उसको एलोबरेट करके रखी है। 254 पत्र में उन्होंने संक्षेप में वो बात ली है। तो इस तरह से कुछ बात है तो सही, लेकिन उसकी जो प्रथम स्टेज है परिभ्रमण की चिंतना, उस पर आना कठिन है। अगर वहाँ आ जाता है तो फिर आगे बढ़ना उतना कठिन नहीं है, लेकिन वहाँ आना कठिन है। इसका मतलब ये हुआ कि जीव को संसार में संसार की चिंता इतनी है कि जितनी अपने जन्म मरण की चिंता नहीं है। मतलब आत्मा जन्म मरण की चिंता, मैंने आत्मा की चिंता, और संसार की चिंता मैंने अनात्मा की चिंता, अजीव की चिंता, पुद्गल की चिंता, शरीर की चिंता, दूसरे दूसरे संयोग की चिंता। जबकि वो सब चिंता प्रासंगिक होती है फॉर द टाइम बीइंग, जो भी प्रसंग है उसकी चिंता आती है। घर में शादी का प्रसंग आए तो उसकी चिंता, बीमारी आई तो उसकी चिंता, लेकिन जब है तब तक, मेहमान आए तो उसकी चिंता, कोई प्रतिकूलता आई तो उसकी चिंता, या अनुकूलता बढ़ाने की चिंता, मतलब वो तो टेम्पररी होती है। और जन्म मरण की चिंता हमेश की है, ये बड़ी चिंता है। लेकिन बड़ी भूल वो है कि बड़ी चिंता तो होती नहीं और छोटी मोटी होती रहती है। एक विचित्र परिस्थिति है कि छोटी मोटी चिंता के उलझन में से हम बाहर ही नहीं आते और बड़ी चिंता के विषय में कुछ होता ही नहीं है। एक उल्टी परिस्थिति चल रही है, वो परिस्थिति सोच समझ करके हमें पलटानी है, मिटानी है, तभी सही रास्ते पे आएंगे। ये हमारी समझ की भूल है कि बड़ी समस्या को हम देखते नहीं है और छोटी मोटी समस्या को नहीं छोड़ करके उसमें ही उलझे हुए रहते हैं। वो हमारी बुद्धिमानी कहाँ की, ये हमारी बुद्धिमानी पर प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है कि हम कितने बुद्धिमान हैं। देखिए, ये छोटी चिंता तो बहुत करते हैं, छोटी मोटी चिंता तो बहुत कर लेते हैं, और इतनी बड़ी चिंता को कुछ कर, इसके विषय में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो मुमुक्षु है उसको ज्ञानी कहते हैं, विचारवान जीव। मुमुक्षु का दूसरा नाम क्या है? विचारवान जीव, जो दीर्घ दृष्टि से विचार कर सकता है कि हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए। हम जो भी छोटी मोटी चिंता करते हैं वो भी हमारे चिंता के बस की बात तो है ही नहीं, वास्तव में वो प्रारब्ध अधीन है कि नहीं? एक बालक को कहां जन्म लेना, इसकी चिंता के अधीन है क्या है? उसको बचपन में दर्द होना या तंदुरुस्ती रहना, वो किसी किसकी चिंता के अधीन है? क्या परवरिश करने वाले चिंता के अधीन है क्या? चलो बच्ची परवरिश करे तो रोग आएगा ही नहीं, अरे पैदा होते ही रोग आ जाता है, क्या करेंगे? तो बाहर का जो जीवन है, सांसारिक जीवन है, वो हमने पूर्व भव में जो भी कर्म बांधे हैं उसके उदय रूप है। उसमें फेरफार करने का अधिकार इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र किसी का भी नहीं है। फिर भी हम फालतू की चिंता करके सही मार्ग को खो बैठते हैं। ऐसी परिस्थिति चालू है, बन रही है, सोच समझ करके हमें वो प्रारब्धाधीन हमारे बाह्य जीवन को गौण करना है और आंतरिक आत्मा को जागृत करके, उजागर करके एक नया जीवन जिसका अंजाम पूर्ण सुख है, ऐसा एक नया जीवन हमको शुरू करना है। इसके लिए ये सब स्वाध्याय, विचार विमर्श, लंबी चौड़ी बातें, सब कुछ इसके लिए है। ऐसे यहाँ तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन होते ही अनंतानुबंधी छूट जाता है। ऐसी अमुक जात ने मैंने खास प्रकार की परिणति उत्पन्न होती है, खड़ी हो जाती है, तो वो परिणति मोक्ष मार्ग में बहुत कार्य करती है।
हिंदी में लिखा है मौजूद होती
है, वो भी था इसे मौजूद होती है, ठीक है। ऐसी खास खास जाति की, अमुक जाति की परिणति, मैंने मोक्ष मार्गी जीव की धार्मिक परिणति आत्म परिणति की उत्पत्ति हो जाती है और वो चालू रहती है। तो परिणति होने से परिणति विरुद्ध जो भी परिणाम होते हैं उसमें उतनी ताकत नहीं है, इसलिए वो टिकते नहीं। तो वो कार्य एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसी परिणति उत्पन्न करनी चाहिए, ये कहने का अभिप्राय है। यहाँ तक आत्मकल्याण नु कार्य अनुभव लागे छे ते मोहनु बलवान पण सूचवे छे। एम जाणीने આ કાર્ય અઘરું છે, એવો અભિપ્રાય છોડી દેવો જોઈએ। અને સ્વરૂપના યથાર્થ નિર્ણય સુધી પહોંચી વિકલ્પથી છૂટા પડી એકત્વ બુદ્ધિ તોડી જ્ઞાન દશા પ્રગટ કરવી તે એક જ ઉપાય છે એવો નિર્ણય કરવો, અને નિર્ણય અનુસાર પરિણતિ ચાલવી જોઈએ।
Gracias.